और प्रेम से एक आदमी रसगुल्ला लाया, तो दोनों में कौन सा अधिक श्रेष्ठ हुआ? वो संत लोग साधारण आदमी कह रही, देखो ये हटा हटा, तबीयत खराब हो जाए, ये रसगुल्ला देना चाहिए। अब वो क्या देखते हैं? देखते हैं कि किसमें सेवा की भावना है, वो सत्तु और वस्तु को नहीं देखते, सेवा की भावना। ये साधारण बात नहीं, ये मध्यम के उत्तम नहीं। नरसिंह महाराज जी के साथ में भिक्षा जा रहा, हमको भिक्षा में वही ले गए सिपाही। कितना में कितना आदर भी होता है, अपमान भी होता है, इसके लिए भिक्षा होती है। भिक्षा किसी द्रव्य के लिए नहीं, जाकर के लोग मान अपमान को सहना सीखें और इसमें गुरु की सेवा करें। तो हम लोग भिक्षा करने गए, तो वो भिक्षा करते बहुत से लोगों के पास में गए, प्रधान उद्देश्य था कुछ हरि कथा सुने। तो हमको भी लगा दे तुम हरि कथा बोलो, और हम अभी एकदम नए गए थे, बांग्ला तो बोल नहीं पाता, चिचुड़ा की बात। तो वो थोड़ा थोड़ा सा हरि कथा थोड़ी थोड़ी बोलते, और हमको भी करते इंट्रोड्यूस, तुम बोलो। तो वो बोलते थे, एक घर में हम लोग गए, बहुत से जगह से हो करके गए, तो कहीं 2 रुपया कहीं 1 रुपया, बहुत उस समय का 1 रुपया साधारण नहीं था। आजकल 100 का रुपया, 100 रुपये का नोट और 100 रुपये का 1 रुपया, ये समझो 1 रुपया बड़ी श्रद्धा के साथ में लोग दे रहे हैं। एक जगह हम गए, एक कोई विधवा औरत थी, बड़ी गरीब, घर में कुछ नहीं। जब गए हम लोग तो उनको प्रणाम किया, दौड़ने लगे, मैं क्या दूं, क्या भी कुछ है नहीं, बड़ी विकल हो गई। महाराज जी ने देखा उसके भाव को, उनको कहा, मैया तुम एक बात करो, थोड़ा सा चावल लो। बड़ी प्रसन्न होकर के घर में गई, इतना सा चावल लिया, एक मुट्ठी चावल, और तो बड़े प्रेम के साथ उन्होंने ग्रहण किया। और ले करके जब आए तो अभी चावल ठाकुर जी के लिए भोग रंधन चढ़ हो रहा था, धो रहा था चावल, बस अपने हाथों से उसको चावल में मिला करके उसको ठाकुर जी के सेवा के लिए उसको दे करके, ये है अहेतु की कृपा बस। इसलिए पदार्थ के मूल्य की तरफ न जा करके सेवा की भावना के मूल्य के तरफ ही हम लोगों को, ये कौन देखेगा? हम लोग नहीं देख सकते, कौन देखेगा? यदि शुद्ध शुद्ध में वैसा मध्यम अधिकारी का उन्नत हो तो ये इसको विचार करेगा। तो इसलिए महापुरुषों की सेवा ऐसे हम लोग करें। यदि कल्याण हम चाहते हैं तो एक चीज समझो, तौलना सीखो, वजन करो, वजन करना सीखो। क्या? एक तरफ में परमार्थ रखो, एक तरफ में विषय रखो। विषय संसार में यहां से यहां तक कि इंद्र इत्यादि का वैभव से लेकर के यहां पर जितने हैं वैभव, एक तरफ में रखो और एक तरफ में परमार्थ की भक्ति रखो। हम विश्व ब्रह्मांड की सारी संपत्ति से जो हमें भगवान की तरफ में प्रवृत्ति करा रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ रहे हैं, उनके ऋण को चुकाया जा सकता है? हम अपने गुरु के ऋण को चुका सकते हैं? अब हम विचार करके देखें, पहले नहीं विचार, अब विचार करें। अपने गुरु का ऋण में कोटि कोटि जन्मों में नहीं, क्यों? उन्हीं की कृपा से आज हमको ब्रह्मभक्ति की तरफ में थोड़ी सी लोभ हो रहा है, दूसरों को भी क्रिएट कर जो जगत में बहुत, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, खबरदार कभी मत भूलो, उसकी तुलना नहीं। इसलिए महापुरुषों की कैसी सेवा होनी चाहिए? जिसे कि वो प्रसन्न हो। सबका अधिकार एक समान नहीं है, पहले तो स्त्रियों का, महिलाओं का और पुरुषों का, पुरुषों में भी अपने अपने अधिकार से, स्त्रियों का भी अपने अपने अधिकार से अनुसार में सेवा करते हैं। सभी लोग सेवा में अधिकार रखते हैं, ये सेवा कल की बल्कि भक्ति ही है। अब देखो कौन से महापुरुष ने किसके ऊपर में कृपा किया है, और तपो महत की सेवा कैसे करते हैं। अब देख चलिए हम लोग नवद्वीप में जाए, जगाई मधाई पर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो गई। अब उसका जीवन कैसा बन गया, महापुरुषों की कैसे सेवा कर रहा है, घाट को अब साफ कर रहा है बड़े प्रेम के साथ और साफ करके उसी धूलि में लौटता है और जो आते हैं उनकी चरण धूलि लेता है। तो ऐसे नहीं देते तो क्या करता है, जब वो लोग चले जाते हैं तो पैर की धूलि जब सीढ़ियों में पड़ी रहती है धूले कर सब समय हरिनाम करता है। इसको देख करके महापुरुष प्रसन्न होंगे कि नहीं, किसी की कोई चीज की जरूरत है उस चीज को देने की चेष्टा है, ये सब महत्व सेवा है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, महापुरुषों को हमारे गुरु जी को या और लोगों को कोई सेवा की जरूरत है, कोई जरूरत और अपने आप में परिपूर्ण है, उनकी सेवा होती है हम लोगों की चीजों की सेवा को ग्रहण करने के लिए, बस उनको कोई जरूरत नहीं। इसलिए महत्व सेवा यदि कल्याण चाहते हैं तो ये महत्व सेवा, इससे क्या होगा, इससे सुकृति होगी, प्रबल सुकृति होगी, यहीं से सुकृति आरंभ है महत्व सेवा से। उनको कपड़े की नमोर की जरूरत है, एक लोटके की जरूरत है, एक आसन की जरूरत है, एक रोटी की जरूरत हो सकती है, कुछ ऐसा ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनकी जरूरत यही जरूरत की जरूरत। पहले जरूरत होती लकड़ी की और घी की, कोई भी साधक अपने गुरु जी के पास में जाता था तो संविधा लेकर के जाता, संविधा मैंने क्या लकड़ी सेवा का उपाय, उसको देख करके गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि यज्ञ करने का वो घी और लकड़ी चाहिए, मंत्र तो उनके पास में है। इसलिए सेवक जितने होते थे जाते थे श्रद्धालु लोग इन दोनों की, इसलिए समय के अनुसार में ये उपाय भी बदल गया, तो वो उपाय में बदल गया सेवा का उपाय। महत् सेवा करने से सुकृति हुई और गुरु के चरणों में संतों के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा उत्पन्न हुई, विश्वास उत्पन्न हुआ, विश्वास होने के बाद में दीक्षा लेते हैं। जैसे ब्रजनाथ और प्रेरणा जी सुनने लगे वैष्णवदास बाबा जी के, सुनते सुनते पहले सुना और सुनते 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 धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ते, बीच बीच में कुछ ले आते उनकी सेवा के लिए और बढ़ते 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 तब उनकी ऐसी श्रद्धा हुई, उनसे प्रार्थना की हम आपसे दीक्षा और हरिनाम दें, तब उनको दीक्षा की। दीक्षा माने क्या, दिव्य ज्ञान के द्वारा उसके अंधकार इत्यादियों को अनर्थों को दूर करने का नाम है, जिस पद्धति से होता है उस पद्धति को कहते हैं, जिसमें कृष्ण तत्व माया तत्व भक्ति तत्व चित्त
जीव तत्व माया तत्व
इत्यादि का ज्ञान, कृष्ण के साथ में संबंध हो जाए और अनर्थ दूर हो जाए, ये इसका नाम है। इस पद्धति के द्वारा यदि नहीं हुआ, केवल कान में मंत्र दे दिया गया और एक रस्सी या डोरा या सूता उपनयन के रूप में चढ़ा दिया, केवल कान पर चढ़ाने के लिए और कोई उसकी उपयोग नहीं, तब तो ये नहीं हुआ दीक्षा नहीं। इसके द्वारा काम क्रोध रूप इत्यादि सब क्रोध इत्यादि काम देश लोग निंदा ये सब यदि दूर हो, और ये होगा कैसे, भगवत तत्व ज्ञान से, इसलिए भगवत तत्व ज्ञान पहले दी दिव्य ज्ञान पहले और छा उस दिव्य ज्ञान से ये सब अनर्थ। यदि क्रोध नहीं दूर हो रहा है, काम दूर नहीं हो रहा है तो क्या समझो, अभी दीक्षा रही है सेवा में रुचि नहीं आ रही, क्या समझो, तत्व ज्ञान हुआ नहीं तो दिव्य ज्ञान भी नहीं हुआ। इसलिए इस सब चीजों की आवश्यकता, इसलिए दीक्षा, दीक्षा के द्वारा गुरु शिष्य में कृष्ण के प्रति संबंध ज्ञान को जो स्वाहा नमः इत्यादि के द्वारा तब उससे संबंध हो जाता। यदि एक लड़की और लड़के का संबंध जोड़ दिया, जैसे तुम इसके पत्नी हो और तुम इसके पति हो, सारा जीवन के लिए ये हो जाता है। तो ऐसे सिद्ध मंत्रों से, जो सिद्ध मंत्र है, इसके द्वारा नहीं होगा, इसलिए कृष्ण के साथ में दिव्य अनुभूति भी उसके अंदर में देते हैं। अब वो दीक्षा लाभ करके मंत्र जप इत्यादि भजन की जो क्रियाएं हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन मंत्र जप इत्यादि, इसी समय में अनिश्चिता भक्ति होती है। घर में रहूं या बाहर में रह करके भजन करूं, सबको छोड़ दूं या इसमें रह करके करूं, माता पिता की सेवा करूं, इसमें वो छह प्रकार की तरंग रंगनी इत्यादि विषय संग्रह विषयों से इत्यादि करना, ये सब चीजें। जब ये सब दूर हो जाएगा तभी अभी शुक्र की जन्म
सुकृति उत्थान दुष्कृति उत्थान भक्ति उत्थान पराध उत्थान,
ये सब ये भी दूर हो जाएगा। तल लय प्रमाद विच्छेद
अप्रतिपत्ति कषाय रसासार,
ये सब दूर हो जाने पर तब निष्ठा से दुर्जी सत्संग होता रहेगा निरंतर। सत्संग कभी नहीं हुआ, सत्संग ये सब समय होगा। एक आदमी सोता है हम महीने में एक बार सत्संग करें, एक आदमी रोज सत्संग रोज साधु संग, प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रतिदिन नियमित रूप से सत्संग, वो भी ग्रहण करने की लालसा से वो करता है तो होगा, जरूर होगा। इसलिए जैसे हम खाते पीते और घर का काम करते हैं, विषय की रक्षा करते हैं, फिर उसी रूप में साधु संग किया है। जिस प्रकार से विषयों का संग का फल मिलता है, क्या विषय में आवेश होता है, ऐसे साधु संग से साधु संग में किया। जैसे विषयों से हम विषयों की तरफ में आकृष्ट हो जाते हैं, साधु संग के द्वारा भगवान की तरफ। इसलिए सत्संग निरंतर चलता रहेगा। जिसका जैसा ही संग उन्नत है वो ऐसा ही उन्नत होगा। साधु संग को कहा गया है श्रवण कीर्तन जले करे, ये श्रवण स्वरूप सिद्धा भक्ति है। यहां जहां से ये जो बतलाया गया है, ये सब महत सेवा से, ये सब स्वरूप सब सिद्धा भक्ति है। इसमें कोई भी कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा और ये संग सिद्धा क्या
हर सिद्धा
नहीं है, ये सब इसके लिए। आरोप सिद्धा में और संग सिद्धा में तो जाल ही मत, उसे कोई भी आवश्यकता उसे दूर करने की चेष्टा। इसके बाद में सत्संग के बाद में क्या होगा? श्रद्धापूर्वक, अब श्रद्धापूर्वक आई यहां पर मूर्ति का दर्शन। एक आदमी देखा, एक सन्यासी यहां पर आए हमारे मिलने जुलने वाले, आए देख क्या देख। हम लोग ऐसा नहीं, हम तो सत्संग प्रणाम होकर के उनकी कृपा की भिक्षा मांगते हैं, ये आपका दर्शन है, आप हमें दर्शन दीजिए, हम तो आपको दर्शन। वो महाशय जी कहो देख रहे, आधा घंटा देखने के बाद ये विक्रम कहां से ले आए, जयपुर से ले आए, बहुत मालूम पड़ता है ये श्री पत्थर नहीं है, ये कौन सा पत्थर है, मकराना पत्थर है ना। मैंने कहा जैसे आप तो बहुत चिंते हैं, ये ठीक ठीक आपने पहचाना, हमने तो आज तक पहचाना ही नहीं, हमको तो ये गुण ही नहीं है ये पहचान। ये मूर्ति दर्शन है, दर्शन ये तुम्हें साक्षात विजय नंदन ऐसी, ये गुरु कृपा से हो, मूर्ति को ऐसे मत देखो ना, ऐसे ऐसे और कैसे कपड़े ये मत देखो, आओ तुम्हारे में करता है, उनसे कृपा करो जी आपका दर्शन हमें मिले। नहीं तो जैसे मोहम्मद गोरी गजनवी आया ना, और ठाकुर जी से निकल करके चले गए और उसने पत्थर को तोड़ दिया, वो वैसे ही हमारी दुर्बुद्धि हो जाएगी। हम देखें ये बहुत सुंदर जी जयपुर का मकराना पत्थर नहीं, ये है, ये अष्टधातु की बड़ी सुंदर मूर्ति है, ये सोने के गौरांग है, ऐसी दुर्बुद्धि हो जाए, ऐसा मत देखो। ठाकुर जी उनको दर्शन करो। और ठाकुर जी के दर्शन में भी कोई तात्पर्य है, एक भक्त शालग्राम का दर्शन करके बड़ा खुश, दूसरा है वो क्या करता है चतुर्भुज मूर्ति देख करके बहुत खुश। कोई चतुर्भुज जी से भी जगन्नाथ जी, क्यों चतुर्भुज जी मूर्ति है वो नारायण स्वरूप है, हिलते डुलते चलते फिरते हैं, और जगन्नाथ जी की मूर्ति भक्तों के लिए युद्ध करती है, लड़ती है, कभी घर से बाहर निकल जाती है, कभी कुछ करती है, कभी सुंदर कीर्तन सुन करके घर से आवेश से निकल करके और भक्त के पीछे जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं और लोग देखते हैं इनका कपड़ा कैसे आग फट गया, लोगों की समझ में नहीं आती। तो वो स्वप्न देकर कहा आज मैं कोई देवदासी गा रही थी गीत गोविंद के पद, मैं दौड़ करके निकल करके गया तो ये हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, किंतु वो लोग थे बड़े भक्त इसलिए विश्वास किया, चैतन्य चैतन्य इत्यादि में उनका उल्लेख किया। जगन्नाथ जी एक बार घोड़े पर चढ़ करके बलदेव के साथ में युद्ध करने के लिए गया, युद्ध को जय करके और भंड गणेश को बांध करके वहां से ले आए लंबोदर को, और अपने पुरी में उन्हें मंदिर के पीछे उनको बैठा कर हमारी सेवा कर, और उनकी लड़की को पकड़ लिया और उनसे राजा से विवाह कराया। ये नारायण कराएंगे चतुर्भुज मूर्ति उनको क्या, इसलिए उनसे ये जगन्नाथ देव जैसे बामन देव इंद्र के लिए भिक्षा मांगने के लिए खप्पर लेकर के चले गए, खड़ा बन करके छोटा सा रूप धारण करके जन्म लिया और उसी समय में चले गए, और उनके लिए झूठ बोला हमको तीन पाप भूमि की जरूरत है किस लिए, ध्यान भजन करने के लिए, बतलाओ तो ये जगन्नाथ जी झूठ बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोले कितने ये झूठ बोले, क्या करके कहा मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूं हमको थोड़ी सी जमीन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए तीन हाथ, क्या करेगा
भजन कर
तीन पाप भूमि भजन करने के लिए हमको चाहिए, अरे कुछ अधिक मांगना नहीं, मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ संतोषी हमको अधिक की जरूरत है, वो खिलखिला करके हंस पड़े, जैसा छोटा सा बच्चा है उसकी बुद्धि छोटी सी है वैसा ही अच्छा ठीक है, जब दे दिया संकल्प करा दिया तो वो पैर बढ़ा दिया ऊंचा, तो वो देखते रह गए अरे ये कैसा, उसकी स्त्री कह रही है और बच्ची लड़की
लड़की
लड़की कह रही है ना, अरे जिस शुक्राचार्य ने कहा जिस पैर से जिस शरीर से तुमने ये बर मांगा तो उसी शरीर से मापो, एक एक हाथ में तुम्हारा एक एक पैर उससे मापो, और उन्होंने एक पैर को ही यहाँ से कर से ये जगन्नाथ जी करेंगे ना साक्षात दृष्टि में, साक्षात वेश बदल करके भी जाएंगे तो अनुमान करके उनको कहेंगे वही जगन्नाथ जी आएगा, जगन्नाथ जी को कैसे पता चला लोगों को ये जगन्नाथ बलदेव जी आएगा, जब वो जा रहे थे आगे आगे और उनकी सेनाएं पीछे पीछे जा रही हैं, राजा भी जा रहा है युद्ध करने के लिए, तो कुछ दूर आगे चिल्काहरण के पास में एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया ले रही थी मट्ठा हो, अरे हमको थोड़ा सा पिला दो, तो दोनों भाइयों को बड़ी प्यास लगी है कुछ है देने के लिए तब तो पिलाऊं, हम तो बेचने के लिए जा रही हैं जो लेगा उसको बेच, अरे हाँ हम देंगे हमारा राजा रहा है वो देगा, अच्छा तो तुम कोई ऐसी चीज दिखलाओ जैसे हम कर सकेंगे, तुम्हारा सैनिक गया जगन्नाथ जी ने सोने की अंगूठी खोल करके और ये सोने की अंगूठी कौन सी थी जो राजा ने खुद अपनी रानी जी के पहने से बना करके और पहना है और उस पर जगन्नाथ लिखा राजा जी ने लिखा वही अंगूठी उस बुढ़िया को दे दी, और जब ये चला गया तो वो देख रही है सचमुच में आते हैं कि नहीं, विश्वास तो उस पर लोगों ने हम लोग रहते तो विश्वास नहीं करते, बस दे दिया राजा है जब आपके दो सैनिक गए हैं वो ऐसा कहाँ कोई चिन्ह है तो हाँ है अंगूठी देते हैं आंखों से आंसू की धारा, ये हमको विश्वास दिलाने के लिए हम लोग जा रहे हैं ये जगन्नाथ और बलदेव जी, बलदेव जी सफेद घोड़े में और बस उन्होंने ताम्र पत्र लिख दिया ये यहाँ का भूभाग तुमको बिना शुल्क इत्यादि के तुम गुणा कर जाओ, वंश परंपरा से इसका भोग। ये सब क्या चीज है? जगन्नाथ जी का। और ये क्या करें? साक्षात रूप में तो अनुमान किया राजा ने, साक्षात रूप में नहीं, और युद्ध भी किया तो साक्षात रूप में नहीं किया, अलक्षित रूप में युद्ध करके और गणेश को पकड़ लिया। और यहाँ पर ये क्या करना है?
साक्षात रूप
में जा रहे हैं, इसलिए इनकी विशेषता
है।
इसके बाद में जगेश्वर तपोलोक में यहाँ पर यज्ञ होता है कि महर्षि की कहाँ पर, वहां पर महर्लोक जगेश्वर एकदम दे रहे हैं यज्ञ में और सबको स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और उसको खाते जा रहे हैं एकदम साक्षात रूप में। तपोलोक में परात्मा परमात्मा की अनुभूति और सत्यलोक में सहस्त्र शीशा भगवान ब्रह्मा जी की सब सेवाओं को ग्रहण कर। अब उसे सत्यलोक के ऊपर में अब जब गया, अब भक्ति का विचार और मूर्ति का विचार। अब यहां पर मूर्ति पीछे पड़ गई, भक्ति पड़ गई, यदि कनिष्ठ भाव अब दूर होगा। जिनको केवल मूर्ति में ही सेवा में ही आनंद है और वही तक समझते हैं तो वो समझो जो अभी कनिष्ठ है। जहां भक्तों का आदर आया, भक्तों का सम्मान आया, जहां कौन भाव भक्त जो शुद्ध सिद्धांत को जानने वाले हैं, भगवान की कथाओं को बड़े सुंदर रूप में प्रवेशन करते हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा बहुत ऊंची चीज है। इसके बाद में स्वरूप की अनुभूति, अब स्वरूप की अनुभूति। क्या स्वरूप की अनुभूति है? मैं शुद्ध चित्त तत्व हूं, आत्मा के अभी जो मैं कौन हूं ये नहीं, अभी ये अनुभूति। मुक्ति पर ब्रह्मानुभूति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, शांत भाव, अन्यथ की आत्यंत की निवृत्ति, और फिर सर्वबंधन क्षय। कितने भी बंधन थे, आसक्ति थी, वो सब आसक्ति दूर हो गए, किंतु शरीर अभी बदला नहीं है, अनुभूति केवल अभी है, तत्व का ज्ञान कुछ हो रहा है। अब इसके बाद में आई शंकर जी के समान यदि भक्त कोई मिल गए और वहां पर चतुर भगवान के चतुर्भुज जो भक्त हैं मिल गए, अब वहां पर उनकी कृपा से भक्ति तत्व में आप प्रवेश हो गया। अभक्ति, अभक्ति में उसके अंत में भगवान नाम श्रवण, हरिकथा श्रवण, कीर्तन, उसी का स्मरण, भगवान की पद सेवा, सख्य भाव, दास्य भाव, शरणागति इत्यादि, ये यहां पर इस तरह से सुनते 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 उसकी भक्ति की लता पर आज ये सब मंशा पत्र गौरचंद्राय राधिकाय तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं पेतमपेक्षतु द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि नतिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं महिमां चरणम्। तृतीय खंड, द्वितीय खंड, सप्तम। स्वरूप और उपासक। स्वरूप माने लोक कुमार, अपना सारा जीवन चरित्र उनसे सुनाया और उसमें उन्होंने प्रारंभिक स्थिति से लेकर महत्संग, महत्सेवा, दीक्षा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, स्वरूप की उपलब्धि, क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति और उसके बाद में क्रमानुसार जगन्नाथ जी के सेवक माने राजा की पदवी, इंद्र की पदवी, ब्रह्मा जी की पदवी, ये सब लाभ करके सदाशिव के लोक में गए। वहां से वैष्णव का संग उनको मिला, वैष्णव के संग में भगवत कथा सुनी, उसमें भगवत तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, भक्ति तत्व के संबंध उन्होंने श्रवण किया और वहीं पर मंत्र उन्होंने अपना छोड़ करके केवल नाम संकीर्तन के द्वारा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हरे नंद किशोर कृष्ण आशी यशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राज बस ये कीर्तन करते देखा ये एकदम वहां पर उपस्थित हो गए। बैकुंठ में जाकर के नारायण का साक्षात्कार, नारायण का स्वयं उन्हीं के समान थे। वहां से थे आज अब कहीं नहीं जाना है, फिर वहां से मंत्र जप के प्रभाव से गोपाल जी का कुछ पार्थक्य उनसे मालूम। गोपाल जैसे अपने सखा के प्रति सत्य भाव रखते हैं, वहां पर सत्य भाव में कुछ बीच में दीवार सी थी, ऐश्वर्य की, सम्मान की, इसलिए उनको गर्मी लगा। आराम लोक में गए, हनुमान जी ने उनको अयोध्या वहां से पहुंचा दिया द्वारका। द्वारका में कुछ दिन संग मिला उनका नारद ऋषि का और उनसे ब्रज की समस्त भावों को उन्होंने समझा। उनका सख्त भाव तभी सीमित था, इसलिए सख्त भाव उनको ब्रज में गए, कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण के जहां पर पहले प्रकट लीला हो रही थी वहां पर गए और वहां से भी अप्रकट लीला में वहां पर पहुंच गए। वहां श्रीमती राधिका जी ने इनको जाओ आज हमारा भक्त एक ब्रज में है, उसको ले आना है, उसको सांत्वना दे करके उसके हृदय में कृष्ण की स्तुति करा करके, भक्ति की स्तुति करा करके और उसे यहाँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए आया था और उनसे ही अपने जीवन की सारी बातें, सारे तत्व उनको समझाया, किंतु उनको प्रेम नहीं हुआ। आंखों में आंसू, पुलक, रोमांच, कंप, अश्रु ये नहीं हुआ। किसने नहीं हुआ? भाव की अनुभूति सुन लिया सब। अभी उनका भी भक्ति का साधन जो था वो भक्ति रस में भी परिणत नहीं हुआ, इसलिए ये सब की जगह हम लोग भी बहुत कुछ सुने किंतु उपलब्धि उसमें नहीं हुई। और ऐसा नहीं, कृष्ण का रूप भी, श्रीमती राधिका जी के रूप भी, गुण भी, लीला भी, उनका दोनों का परस्पर प्रीति ये सब कुछ सुनते हैं किंतु कोई भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता तपुर्जनों की के कोटि कोटि अपराध भी हो सकते हैं और नहीं होने पर भी अपराध सब दूर हो गया, किंतु महती कृपा जो है वो अभी नहीं, इसलिए स्फूर्ति नहीं। जब इतना नहीं हुआ देखा ये कृष्ण प्रेम नहीं आ रहा, भगवत प्रेम नहीं आ रहा, अनुभूति नहीं हो रही, बस अपना हाथ उनके सिर पर और इच्छा की और साथ ही साथ में उनके अंदर में जो जो भाव थे उनके अंदर में भी बनी। ये कहां हुआ? वृंदावन, वृंदावन
प्रकट वृंदावन, अप्रकट वृंदावन, प्रकट वृंदावन,
प्रकट वृंदावन में जहाँ पर कृष्ण की लीला नहीं हो रही है उस प्रकट वृंदावन
में, दृश्यमान प्रकाश में,
दृश्यमान प्रकाश, किंतु वहां पर उन्होंने कभी कभी दर्शन किया अपने गुरु जी की कृपा से। अब वो प्रेम में विभोर हो गए और देखा क्या, एकदम तन्मय हो गए, मूर्छित हो गए वृंदावन जमुना के किनारे, और देखा कि एकदम तो पर वहां पर गए कृष्ण से उनका कृष्ण को दर्शन किया। और अब देखा जैसे यही हमारे जो गुरु जी थे वो कुमार जी वहीं पर बैठे हैं, कृष्ण ने इनका हाथ पकड़ करके उनके हाथ में कहा चाहिए तुम्हारा तुम इसको देखो सुनो शिक्षा दे। वहां पर भी उस शिक्षा की जरूरत होगी, शिक्षा उसको ग्रहण कर लिया और उनके हृदय में जो जो भावनाएं थी जो जो भाव था वो सब उनके हृदय में। अब इसको सुन करके